प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 31 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आपका सभी अपने प्रिय साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह विषय है राजकोषीय परिषद। दोस्तों, हो सकता है कि आपने ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन है ये बहुत महत्वपूर्ण। ये राजकोषीय परिषद क्या है, इसे क्यों इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है, यह परिषद क्या क्या करेगी और इसकी हैसियत हमारी कार्यपालिका, विधायिका और संविधान के तहत किस तरीके की होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पर इसमें हम लोग बात करेंगे और कोशिश होगी कि अपनी बात को थोड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से भी मैं आपके सामने रखूं, ताकि अगर एग्जाम में कुछ पूछा जाता है तो आप बहुत स्पष्ट रूप से अपनी अवधारणा बना करके बहुत अच्छा आंसर लिख सकें। पहली बात मित्रों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा या सतर्क करना चाहूंगा और वो ये कि ध्यान रखिए कि चूंकि यह विषय इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमी का नहीं है, इकोनॉमिक्स का है, सब्जेक्ट से रिलेटेड विषय है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसके साथ धैर्य बरतना पड़ेगा, थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मेरा प्रयास भी यही होगा कि मैं अपनी बात बहुत सरल शब्दों में आपके सामने रखूं, फिर भी हो सकता है कि अगर आपकी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स की नहीं हो या इकोनॉमिक्स आपको बहुत प्रिय विषय न लगता हो, सरल न लगता हो, तो थोड़ी कठिनाई महसूस हो। लेकिन दो बातें ध्यान में रखिए। पहला तो यह है कि यह विषय कठिन नहीं होगा, मैं कोशिश मेरी यह होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसे सरल बनाऊं। दूसरा यह कि यह टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, खासकर अभी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं अक्टूबर में, उसको देखते हुए मैं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में पाता हूं, इसलिए आप इसे अवॉइड भी मत कीजिएगा। और अवॉइड भले इसलिए भी मत कीजिएगा, भले ही आप ये मान करके चले कि अभी अक्टूबर में तो मुझे एग्जाम देना नहीं है क्योंकि मैं तो प्री में ही नहीं बैठ रहा हूं, फिर भी आपको इस टॉपिक को समझना है क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जो लंबे समय तक एक बहस का मुद्दा बनेगा। अगर राजकोषीय परिषद की स्थापना नहीं हुई तो, और अगर परिषद की स्थापना हो गई, फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाएगा। इसलिए आपको इस टॉपिक को पूरी तवज्जो देनी है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम राजकोषीय परिषद पर बात करते हैं। अखबारों में आपने इन दिनों पढ़ा होगा कि जो हमारा राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन समीक्षा समिति जो थी, उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उस रिपोर्ट में उसने सीधे सीधे यह सलाह दी है कि सरकार एक स्वतंत्र वित्तीय परिषद कायम करे, जिसे वो राजकोषीय परिषद कह रही है। ये राजकोषीय परिषद कायम करने की बात क्यों आई है, तो आइए हम सीधे सीधे अब टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सरकार एक बजट पेश करती है, आपको मालूम है हर साल बजट पेश किया जाता है और उस बजट में सरकार के दो मुख्य बातें होती हैं। पहली तो यह कि हमारी इतनी कमाई होगी, जो हम घर का भी अपना बजट बनाते हैं, हम साल भर में यहां यहां से इतनी कमाई करेंगे और इसके बाद जो हमारी कमाई होगी उसे फिर हम इन इन मदों पर इतना इतना खर्च करेंगे। तो कमाई अनुमानित, खर्च अनुमानित और फिर हमारा कितना घाटा होगा और या कितना फायदा होगा, सरप्लस होंगे या हम डेफिसिट होंगे। तो ज्यादातर जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, जिसमें भारत भी है, वो सामान्य तौर पर घाटे का बजट पेश करते हैं। देखिए, हम मानकर चलते हैं कि जो सरकार है वो बिजनेसमैन तो है नहीं कि वह फायदा देखेगी। एक डेवलपिंग कंट्री इसलिए घाटे का बजट पेश करती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो ये मानकर चलती है कि उसे तो अभी हमारे देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करना है और अंततः उसका एक लंबे समय के बाद अप्रत्यक्ष रूप से और फिर सीधे सीधे फायदा होगा, लेकिन शुरुआत में वह ऐसा करती है। लेकिन मुद्दा यह होता है कि यदि यह घाटा बहुत ज्यादा बढ़ता है, एक सीमा के बाद का घाटा अधिक हो जाता है, तो उसका असर फिर देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक पड़ता है, क्योंकि सरकार ने मान लीजिए कि खर्चा कर दिया 105 रुपए और कमाई उसकी थी 100 रुपए, परसेंटेज पे जोड़ दीजिए 5% ज्यादा खर्च कर दिया, अब होगा कि ये 5% जो उसने अधिक खर्च किया है इसकी भरपाई करने के लिए कुछ न कुछ तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि 5 रुपए उसने तो खर्च कर दिए हैं। अब क्या करेगी, या वो करेंसी ज्यादा छापेगी, सरकार करेंसी ज्यादा छापेगी तो आप समझ सकते हैं, इतनी इकोनॉमिक्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाजार में करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, जब करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, उससे नुकसान हो जाएगा। या फिर सरकार कर्ज लेगी, चाहे विदेश से कर्ज ले चाहे अपने देश से कर्ज ले, तो कर्ज पर वो ब्याज का भुगतान करती रहेगी, तो वो एक सीमा से अधिक घाटा हमेशा देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए खराब होता है, राइट। अब एक डेमोक्रेसी में क्या होती है, देखिए डेमोक्रेसी में होता यह है कि जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सत्ता में आने की कोशिश करती हैं, तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, है ना, कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और स्वाभाविक है लोकतांत्रिक सरकार ये करेगी ही करेगी। अब होता यह है कि जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो अपने वायदों को पूरा करने के लिए वो कदम उठाती हैं, जबकि अर्निंग हो नहीं रही है, कमाई उस तरीके से नहीं हो रही है। कमाई तो जो होगी वो टोटल आर्थिक विकास पर होगी, कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमारा सर्विस सेक्टर किस रफ्तार से बढ़ रहा है, पैसा तो वहां से ही आएगा ना, लेकिन वो उतना आ नहीं रहा है, वायदे ज्यादा कर दिए गए हैं, लोक कल्याणकारी समाज कल्याण के काम ज्यादा हो रहे हैं। तो होता यह है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट बहुत सारे ये कह लीजिए कि लोक लुभावने कदम उठाने लगती है, पॉपुलरिस्टिक अप्रोच लेकर चलती है, और फिर उसके दिमाग से सच पूछे तो जो राजकोषीय घाटा है उसका विचार थोड़ा हट सा जाता है कि ठीक है आगे देखा जाएगा, और फिर स्थिति होती है कुछ समय के बाद कि जो सरकार है वो एक ट्रैप में फंस जाती है, एक जकड़, एक जो आर्थिक जकड़न है वो आ जाती है, और फिर एक दलदल में फंसने जैसा होता है कि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना ताकत लगाता है निकाल अपने आप को निकालने के लिए, उतना पता लगता है कि वो दलदल में और उलझता चला जाता है। अब इसके साथ संकट एक दूसरा भी होता है, संकट ये होता है कि जो हमारे राजनेता हैं या जो हमारा तंत्र है उसमें इकोनॉमी के बहुत एक्सपर्ट उस तरीके से नहीं होते हैं, उस तरीके से नहीं होते हैं, लेकिन चलिए वित्त मंत्रालय होता है और उसमें बकायदे अर्थशास्त्री भी होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, वहां से सरकार मदद लेती है, मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बचपना होता है बजट बनाने के मामले में, बहुत सोच समझकर बजट बनाया जाता है, लेकिन उसकी एक जो संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए वो भारत जैसे देश में नहीं है संस्थागत व्यवस्था, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में यह संस्थागत व्यवस्था है। संस्थागत व्यवस्था का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वह इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन सरकार के केवल राजकोषीय व्यवस्था को देख रहा है, वो केवल यह देख रहा है कि सरकार जो बजट बना रही है वो ठीक से बना रही है कि नहीं बना रही है, यानी कि वो यथार्थवादी है कि नहीं है। इसके लिए वो बकायदे सरकार को आंकड़े प्रोवाइड करेगी, सरकार को रिपोर्ट्स देगी, सरकार को अपनी सलाह देगी और बनाने में मदद करेगी। इसके बाद फिर वो उसको वाच भी करेगी, देखभाल भी करेगी कि ठीक है जो बजट बनाया गया है उसके अनुसार काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो बहुत ही एक्सपर्ट बॉडी है, मतलब आप देखिए कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी इस तरह का राजकोषीय परिषद काम कर रहा है, मतलब बकायदे वहां हैं और वह पूरी तरीके से पूरी शक्ति के साथ पूरी क्षमता के साथ और पूरी प्रतिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करती हैं। अमेरिका में तो जो वहां की जो संसद है उसका बकायदे बजट कार्यालय है, उसका नाम ही है बजट कार्यालय, CBO, कांग्रेस बजट ऑफिस बकायदे है, जो 1975 से अपने इसी राजकोषीय प्रबंधन, आप कह लीजिए ज्यादा अच्छा शब्द है, कि राजकोषीय प्रबंधन का काम करती है। वो बकायदे स्वतंत्र बजट और जो आर्थिक विकास जो हो सकता है उसका अनुमान लगाती है, और अनुमान लगाने के बाद जो विधायिका है विधायिका के सामने सारी चीजें वो प्रस्तुत करती है। देखिए जो सारे अधिकार हैं डेफिनेटली वो विधायिका के होंगे, जो लेजिस्लेचर है, मतलब ये नहीं है कि ये जो स्वतंत्र परिषद अगर इस तरह से कोई राजकोषीय बन गई तो वो विधायिका की ताकत को अपने हाथ में ले लेगी, वो संसद को रिप्लेस कर देगी, नॉट एट ऑल। एक डेमोक्रेसी में आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये इनफैक्ट सही मायने में विधायिका को असिस्ट करेगी बजट के अनुमान लगाने में, खर्चों को नियंत्रित करने में, समय समय पर अगर कोई एक्सक्लूसिव मैटर आया है तो उसको उसके एडवाइस देने में। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है फ्रेंड्स कि नीति आयोग तो है, लेकिन देखिए जो नीति आयोग है वो तो बहुत ही लार्ज स्केल पर काम कर रहा है। वो एजुकेशन के बारे में भी सलाह देगा, वो पर्यावरण के बारे में भी सलाह देगा, वो ढेर सारी चीजों के बारे में सलाह दे रहा है, वो ओवरऑल चीजों को लेकर के चल रहा है। लेकिन ये जो राजकोषीय परिषद होगा ये स्पेशली बजट के लिए होगा, ये एक तरह से सरकार के खाते की देखभाल करने वाला, एडवाइस करने वाला ये संस्थान होगा। दोस्तों हमारे संविधान में जो स्थिति है आइए उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि तभी मुझे लगता है कि इनफैक्ट विश्लेषण करने के लिए हमारे पास इनपुट, अच्छे इनपुट अवेलेबल हो सकेंगे। देखिए हमारे संविधान में दो ऐसे अभी संस्थाएं हैं, निकाय हैं, बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह का काम कर रही है, एग्जैक्ट इस तरह का काम नहीं कर रही, इससे जुड़ा हुआ काम कर रही है। अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे तो आप सोच भी लेंगे। इसमें से एक है दोस्तों वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। आप जानते हैं बकायदे संवैधानिक संस्था है, 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है और यह केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स का जो बंटवारा होगा इसके बारे में एक नीतिगत सुझाव देती है, राष्ट्रपति के सामने अपना प्रस्ताव पेश करती है और फिर उसे एक्सेप्ट करके उसी हिसाब से 5 साल तक का आप कह दीजिए कि सरकार वो अपनी जवाबदेही निभाती रहती है। पहला वित्त आयोग और दूसरा जो है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब आप देखिए कि इन दोनों के काम क्या है, है दोनों के काम वित्त से ही संबंधित, लेकिन एक तो टैक्सेस के बारे में सलाह दे रहा है केंद्र और राज्यों के बारे में, राइट, ठीक है, उसे केंद्र सरकार मान करके फिर अपना काम करती है। दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट का काम कर रहा है, जब सरकार खर्च कर देती है तो जो सरकार ने खर्च किया है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन है कि नहीं है वो इनको देखती है, तो वो एक तरीके से सरकार के खर्च पर नियंत्रण रखती है या यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखती है, फिर वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ये हमारे पास दो बॉडी है और तीसरा जो है वो मंत्रालय है, वो तो वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय कोई उस तरह से संवैधानिक संस्था नहीं है, है ना, वो तो दूसरे मंत्रालय है, उसी तरह से वित्त मंत्रालय है, नो डाउट कि बहुत पावरफुल मंत्रालय है और जो हमारे यहाँ का जो बजट पेश किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे पास ये दो संस्थाएं हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन दो संस्थानों का कोई संबंध राजकोषीय व्यवस्था से नहीं है। ये अपना काम कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन राजकोषीय एक्सपर्टीज इनके पास नहीं है जो वाकई में विधायिका के पास होना चाहिए। विधायिका का मतलब है कि जो संसद के पास होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम एग्जीक्यूटिव के पास आ जाते हैं, कार्यपालिका के पास चलिए आ जाते हैं। कार्यपालिका की क्या स्थिति है दोस्तों? देखिए कार्यपालिका का जो काम है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं वह उसको लागू करे, तो वो इम्प्लीमेंट कर रही है और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के पास जो वित्तीय संस्थागत समर्थन होना चाहिए वो नहीं है पॉलिसी वाइज, है ना। ठीक है आप ऑफिस में जाएंगे तो उनका एक अकाउंट सेक्शन होगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन वो उसको खर्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट उनके पास कोई उस तरह का एडवाइजर नहीं होता है। हाँ ये बात अलग है कि वो समय पड़ने पर किसी एक्सपर्ट को बुला लें, कोई समिति बना लें और समिति उनको एडवाइस दे और इसके बाद फिर वो समिति तो खत्म ही हो जाती है। संसद के पास भी आपको समिति के अधिकार हैं, आपको मालूम है कि अब जो हमारा बजट आता है उसको फिर छोटी छोटी समितियां, जो संसदीय समितियां होती हैं वो उस पर विचार करती हैं, देखती हैं, लेकिन वो भी एक्सपर्ट बॉडीज नहीं है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में अब ये बहुत जरूरत महसूस की जाने लगी है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट संस्था होनी चाहिए और वह संस्था पूरी तरह से एक्सपर्ट लोगों की हो और राजकोषीय मामलों में वो एडवाइस करें। इसलिए जो राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन समीक्षा समिति, ये आपको नाम मालूम होना चाहिए, राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन समीक्षा समिति, इसी समिति ने एक स्वतंत्र वित्तीय परिषद कायम करने की सिफारिश की है। इस समिति ने जो राजकोषीय परिषद की बात कही है उसमें उसके लिए 11 काम निर्धारित किए हैं, 11 की इस तरीके के काम करने चाहिए। इन 11 कामों को आप दो भागों में बांट सकते हैं, उसमें से दोस्तों 9 काम ऐसे हैं, 9 काम कि सरकार जो निर्णय लेगी तो निर्णय लेने के बारे में उसकी मदद करना, यानी कि सरकार को सपोर्ट करना। अब परिषद सरकार को सपोर्ट कैसे कर सकती है? नो डाउट सरकार को सपोर्ट कर सकती है वो बहुत अच्छे डेटा प्रोवाइड करके। सरकार जब किसी संकट में फंसी हुई है तो उसको बहुत सही तरीके से विकल्प सुझा करके इस तरीके से वो मदद कर सकती है, अलग अलग तरीके के रास्ते दिखा करके मदद कर सकती है, तो वो निर्णय प्रक्रिया में वो मदद करेगी। इसके साथ ही साथ 2 काम और हैं, 9 काम तो उसके इसी तरीके के हैं, है ना, डेटा जुटा करके देना ताकि सरकार की विश्वसनीयता बढ़ सके, सरकार के सामने कोई संकट आ गया है तो उस समय वो फिर नीतिगत विकल्प सुझा सके कि ठीक है आप ये रास्ते अख्तियार कीजिए। जो 2 और बड़े काम हैं उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पहला तो ये है दोस्तों कि ये 2 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी, एनालिटिकल रिपोर्ट। एक एनालिटिकल जो रिपोर्ट होगी वो हमारे देश का जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो है उसके ऊपर होगा कि हमारा इकोनॉमिक सिनेरियो किस तरीके का है, और ये जो इकोनॉमिक सिनेरियो की जो ये परिषद रिपोर्ट तैयार करेगी इसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो बजट के साथ देश के सामने रखेंगे, बजट जब वो पेश करेंगे तो इसे भी रखेंगे ताकि लोग जान सकें कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अभी कैसी है और इस आर्थिक परिस्थिति में इस तरीके का बजट पेश किया जा रहा है। और दूसरा जो उसकी जो रिपोर्ट होगी दोस्तों वो होगी एक सालाना राजकोषीय नीति रिपोर्ट तैयार करेगी, स्पेशली राजकोषीय नीति के ऊपर जो राजकोषीय मुद्दों से संबंधित होंगे, यानी कि जो हमारा जो फिजिकल जो राजकोषीय राजकोष है कह लीजिए, उस राजकोष के बारे में क्या क्या किया गया है, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए हैं, इन सब पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। और ये दोनों की दोनों विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जाएंगी, यानी कि लोगों को प्रोवाइड की जाएगी ताकि उसके ऊपर बहस हो सके, उसके ऊपर बातचीत हो सके और पब्लिक ओपिनियन पता लग सके। और ऐसा करके फिर ये जो राजकोषीय जो हमारा प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित हो सकेगा, ज्यादा से ज्यादा यथार्थवादी हो सकेगा और उसे एक नियंत्रण में भी रखा जा सकेगा, क्योंकि अभी जो राजकोषीय नियंत्रण या जो प्रबंधन है वो बड़ा टेम्परेरी किस्म का है। आप यूं कह लीजिए कि वित्त मंत्रालय इसकी देखरेख करता है, लेकिन मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग ओवरऑल पॉलिसीज को लेकर के चलता है ना, उसका संबंध केवल वित्तीय प्रबंधन से नहीं है। हम ये भी देख चुके हैं कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसकी क्या लिमिटेशंस है, ये भी हम देख चुके हैं। तो ऐसी व्यवस्था में निष्कर्ष फ्रेंड्स ये निकलता है कि सही मायने में एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का होना शायद भारत के लिए बहुत जरूरी है, और ऐसी स्थिति में तो और भी जरूरी है जबकि डिफरेंट डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जानकारियां मैंने आपको इस टॉपिक पर दी है राजकोषीय परिषद के ऊपर, और ये मैं रिपीट करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, इस टॉपिक को लगातार आप अपडेट करते रहिएगा, ये बहुत आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।